તારીખ 2/10/1990 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 54
જ્ઞાન હોતે સત્પુરુષ કા જ્ઞાન હોતે સ્વરૂપ કા પહેચાન હોતે મત તો નિશ્ચિત હો ગયા એક્સપાયરી ડેટ મિલ ગઈ તબ તુજે જિંદા રહેના નહીં હૈ આતા હૈ પત્ર મેં તરે નિકલ તુજે તેરે આયુ પ્રિય હૈ તો શ્રી ગુરુ કે ચરણ મેં લે ચલ દે તો કહાં જાતા હૈ દુકાન પે યે મંદિર પે કહાં ચલતા હૈ
મોક્ષ આપવામાં કૃપણ નથી, ભક્તિ આપવામાં કૃપણ છે.
એસી કેસે વાત લખી પરમેશ્વર મોક્ષ દેને મે કૃપણ નહીં હૈ, લેકિન ભક્તિ દેને મે ક્યો કૃપણ હૈ, એસા કહા હૈ. ઉલમ અનુભવ દિયા હૈ તુકો દેને ક્યો કૃપણ હૈ, એસી કૃપણતા ક્યો કરતે હૈ પરમેશ્વર, નહીં કરની ચાહીએ. એસા કહે સબો કો દે દે, વો ચાહતે હૈ કે સબો કો હો वो भक्ति दे दे, सब की योग्यता आ जाए और सबका हित हो जाए, ऐसा.
बहुत सुंदर है. क्या पत्र में छोड़ याद नहीं किया
सत्पुरुष ने ओळखाण भक्ति ने बहुमान बन गई सब ऐसा जो नहीं होता सत्पुरुष से नहीं भक्ति बहुमान आदि में भाव नहीं उत्तर दिशा जो नहीं होता
અવલંબિત છે એક એવો વિષય છે કે જોનારનું નામ બદલાઈ જાય છે, જાતિ બદલાઈ જાય છે. તીર્થંકર ને સમોસરણ માં ભક્તિ કરે છે, નાની ક્યાં કદી રસ્તમાં છે, પણ સમોસરણમાં જઈને તીર્થંકર ને કરે છે, અનંત વાર કરે છે, નાની ની અનંત વાર કરે છે, દરગંધ ગુરુ ને પણ અનંત વાર કરે છે.
પરમેશ્વર બુદ્ધિ કા જો બાત હૈ યે હો ગઈ. અને જો પરમેશ્વર બુદ્ધિ કા બાત હૈ તો હો ગઈ હોગે તને
નહીં ઉસમે યે હો ગઈ નહીં વો તો ઉસમે તો યે બાત કરા कि मेरे आत्मा पर जिस पुरुष के वचन की असर होती कैसे पता चलता है, यहां से नहीं चलता है, यहां से चलता है. जो आत्मभाव प्रदर्शित करते हैं, जो आत्मभाव देखने में आते हैं इनकी चेष्टा में, इनके वचन में, पर इधर कुछ झंझनाहट होती हो तो उसको पता चलता है कि कहीं ऐसी असर नहीं हुई. तो उसको अधिक ध्यान जाता है. पहले तो ध्यान ही नहीं जाता है, सत्पुरुष मिलता है लेकिन ध्यान नहीं जाता है प्रारंभ में. फिर ध्यान कब जाता है कि कुछ असर होती है तो ध्यान जाता है, भीतर से तो बात आई तो फिर वो और इसकी अधिक गहराई में जाता है कि क्या क्या बात है. तब उनको दिखता है कि अरे मेरी गुरु हो गई, ये छल मस्त मेरे उसने देख लिया, छल मस्त है ही नहीं, ये तो वाकई ही परमेश्वर है मेरे लिए. तो कोई एक स्वरूप दिखने में आता है, परमेश्वर की मूर्ति इसमें दिखने में आती है, बस बात खत्म.
चित्त की व्याकुलता का चितार 161 के पत्र में बहुत अच्छा श्रीमद
इस तरह वेदांत जाए
इसके पहले सद्गुरु नो योग तो
सद्गुरु का योग तो मिलता नहीं और हमको सद्गुरु के तौर पर माना जाता है तो फिर क्या करना। 23 वर्ष है
मीटर
में ये बात सद्गुरु का योग तो मुझे मिला नहीं और उनकी जो ज्ञान की विशेषता थी विद्यता की भी बहुत विशेषता थी लोग तो सब कुछ मानने भी लगे थे जो परिचय में आए थे वो लोग मानते थे हालांकि उसमें कोई मानने वाले का दोष नहीं था उनकी योग्यता भी कुछ ऐसी ही थी कि ये ज्ञान प्राप्ति के नजदीक पहुंचे थे पहुंचने में कोई देर नहीं थी पर सम्मुख भी हो चुके थे तो उसको उसमें और ज्ञानी में उतना अंतर नहीं है फिर वो खुद को अपने को अपने आप को तो वो मानते ही नहीं करते थे और हमको सद्गुरु के तौर पर माना जाता है तो फिर क्या करना। हम जिस विषय में शंका वाले हैं उस विषय में दूसरों को क्या समझाए प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है मान सकते शंका बनी रहती है शंका निर्मूल होती नहीं कुछ समझाया नहीं जाता पर वक्त बीतता जाता है ये उनको बहुत सूखता है। इस कारण से तथा कुछ विशेष उद्देश्य त्याग भी नहीं होता 2300 वर्ष विचार तो त्याग जाते हैं जिससे सारी स्थिति शंका रूप हो गई है। इससे इसके अपेक्षा से तो हमारे लिए जहर पीकर मर जाना उत्तम है सर्वोत्तम है। अगर हम ज्ञान दशा में नहीं प्रवेश करें तो जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। मामूली चुपता है क्या देखो कितना अखरता है अपने ज्ञान दशा में प्राप्ति नहीं मतलब कितना अखरता है कि ऐसे तो जिंदा रहना अच्छा नहीं है जहर पीकर मर जाना मतलब है। ऐसे दर्शन पर इस तरह वेदा जाने ऐसे आकृता होती
सभी ज्ञानियों के भाव में ये प्राणांत की
इसका कारण है बहुत ये बात इतनी एग्जैक्ट है इसलिए कि प्राण किस मूल्य से मिलता है ये इंश्योरेंस वाला दे सकता है क्या तो जिंदगी का बीमा लेते हैं और जगह तो कोई प्राण के तो बात सौदाबाजी नहीं है एक जगह इसकी सौदाबाजी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले करते हैं है कि नहीं। किसी भी मूल्य से प्राण के रिप्लेसमेंट नहीं होती पैसा अवश्य मिलता है मर जाने से दूसरों को उनको तो मिले नहीं तो है ही नहीं दूसरों को मिलता है इसका मतलब कि इसका अवेजी नहीं है देयर इज नो एक्सचेंज ठीक है। अब परमात्मा के सामने कौन है जो जिस चीज को पाना है इसकी मूल्य क्या है। लोग निछावर करे तो तन मन धन की बात आएगी कौन सी बात आएगी कि हम तो हमारे देव गुरु शास्त्र के पीछे तन मन धन निछावर करके काम कर रहे हैं लेकिन इसमें प्राण की बात कहाँ आई प्राण की बात नहीं आई। तो जिसकी उतनी तैयारी हो जाती है कि अब तो मैं प्राण भी निछावर कर सकता हूं बस बात खत्म तब जो है परमात्मा अंदर से पधारते हैं वो परीक्षा वो भी करते हैं। ये भगवत में परीक्षा वाली बात कहां से आई है कि भगवान भक्त की परीक्षा करते हैं बात आई कहां से तो यहां से तो आई है सब आई है दिव्य ध्वनि में से आई है लेकिन तो पृष्ठ होकर के उसका रूप कुछ समझ फर्क हो गया है, बाकी मूल बात तो है इसमें, इसका टेस्ट कि यहाँ तक पहुँचते हैं तो इनके लिए मार्ग प्राप्ति सरल है, पर यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं वहाँ तक मार्ग प्राप्ति विकट रहती है। इसी की सारी बात कि उसको अभी किसी की कीमत, अपने प्राणों की कीमत भी नहीं रही, बात खत्म। अब आगे विश्व में तो कोई चीज है ही नहीं प्राण के अतिरिक्त, अधिक कोई चीज तो है, तो इसलिए जो आखिर की कीमती से कीमती चीज थी उस हद तक वो चरम सीमा में आ गया, चरम सीमा में आ गया तो बात खत्म। फिर तो परिस्थिति में तो ऑब्स्टेकल कौन सा रहा बताइए, कौन सा अवरोध है, कौन सा प्रतिबंध रहा? कोई प्रतिबंध नहीं है तो फिर क्या आपत्ति है, चीज तो स्वयं खुद है, कोई दूसरे घर से तो चीज लानी नहीं है, पराधीन कर रहे हैं, अवरोध हट जाते हैं तो परमात्मा तो कारण, परमात्मा तो दरवाजे पे खड़ा है, खड़ा है इतना नहीं है, दरवाजा खटखटाता भी है कि तुम किवाड़ खोल दिया तो दर्शन हो गया, किवाड़ खोलने की बात है, आखिर किवाड़ खुल जाता है वहां उतना एग्जैक्ट बात है।
આત્મસિદ્ધિ માં કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જીવ કરે, એવો રસ થયા વિના
ઉગે નહીં આત્મા, એમ કેમ
કીધું છે? એમ કેમ કીધું છે? એ માસ્ટરિક વાત
કરે છે કે જેને આત્મવિચાર ઉગે છે, આત્મવિચાર એટલે આત્માનું પરમ હિત કરવાનો વિચાર, ઉદ્દેશ, વિચાર એટલે ઉદ્દેશ, તો જે જીવના વિચારમાં એવો ઉદ્દેશ કે મારે મારું જીવ કરી જ જોયું છે, એ શાસ્ત્ર નહીં ગોતે, એ સત્પુરુષ ને ગોતશે એમ કહ્યું છે, કેમ કે શાસ્ત્ર તો જીવવાની છે, પરોક્ષ જીવ ઉપકાર છે, અત્યારે જીનેન્દ્ર નથી આ કામમાં, અત્યારે જીનેન્દ્રની ઉપસ્થિતિ નથી, કોઈ કેવળ પરમાત્મા નથી, તેથી તમે પછી અત્યંત છેલ્લા અંતિમ હતા, અમે કોઈ આ કામ થાય એટલે વાત યથા પેલા સદગુરુ
પ્રત્યક્ષ સદગુરુ ગોતે,
જો એ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ ને નહીં ગોતે તો, અને પરોક્ષ રહેલા જીનેન્દ્ર સુધીના કોઈ વચન ને લેવા માટે દોડશે કે મારે એના વચન માંથી પ્રાપ્તિ કરવી છે, એને નાળ પકડી દીધી, કૃપાળુ દેવે એને નામનો ધબકારો પકડ્યો છે કે આને ખરેખર આત્મ પ્રાપ્તિ નો વિચાર જોયો નથી, તો આગંદર કરે છે, માણસ ખોટો છે, આ માને ધબકારો પકડે છે, કોણ દેખી વાત આત્મસિદ્ધિ ની આ પંક્તિમાં ઘણું ઊંડાણ છે, ઉપર ઉપરથી સમજાય છે, બહુ ઊંડાણ છે, અને અજ્ઞાની ને પાત્ર ને અપાત્ર વચ્ચે ને બે વાત ખુલ્લી કરી નાખી છે,
એવું છે ને કે,
અને એ હિંમત કરી શકે, આવા મહાપુરુષ આ હિંમત કરી શકે, નહીં તો તો બધા માર વાલી, જીનેન્દ્ર કલ્પા તમે સત્પુરુષ ને આગળ કરો છો, શું કરે અમારા ભગવાન ને પાછળ મૂકો, અમારા ભગવાન નું અપમાન કરો છો, માર ખાતો એમ જઈને
મારે,
હા મારે રીતે પથરા મારે,
મારું શું કહેવાનું છે કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ ને ગોતવાથી આત્માનો વિચાર, આત્મા પ્રત્યેનો ભાવ ને આત્માના સ્વભાવમાં જોવા માટેનો રસ્તો, એ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ વગર મળે નહીં, સાથે એમને મર્મની પણ વાત કરી છે, એટલે એનો અર્થ તો નક્કી થઈ ગયો ને કે જેને આત્મજ્ઞાન પામવું છે, જેને સ્વભાવમાં જવું છે, તો એને પ્રત્યક્ષ સદગુરુ જોઈએ જોઈએ જોઈએ,
એક સત્પુરુષ ને શોધ, બીજું કઈ શોધમાં એટલા માટે તો કઈ બીજું કઈ
શોધ, પ્રત્યક્ષ સદગુરુ નું એડ્રેસ ક્યાં છે?
એડ્રેસ યોગ્યતામાં પડ્યું છે, પ્રત્યક્ષ સદગુરુનો એડ્રેસ યોગ્યતાની ડાયરીમાં છે, ક્યાંકથી મળે તો વાંચી લે, બાકી ક્યાંય નથી, યોગ્યતાની ડાયરીમાં છે. એમ નહીં ભૂસાતું નથી ક્યારે, એવી સાહિત્ય લખાયેલું છે કે ભૂસાતું નથી ક્યારે. બે લાખ નો કોઈ હીરો લે પોતાના ખીચામાં, જેબમાં 2 લાખ રૂપિયા હોય પણ હીરા કોઈ ત્રિભુવનદાસ જવાની પસ્તા કરે ને પતા હે કે હીરા ને એના કોઈ પહેચાન હે ક્યાં, પણ 2 લાખ નહીં હોય તો કોઈ કોઈ ઝવેર નહીં હો સકતા હે ક્યાં, જિસકે પાસ ખરીદને કા પૈસા નહીં હોય લેકિન જિસકો પાસ નજર હે દેખને કે મેરા કો પહેચાનતા હે કે નહીં પહેચાનતા. તો પહેચાન હોને કે લીએ તો ઝવેર હોના ચાહીએ. એ ચૈતન્ય હીરા હૈ, તત્પુરુષ કો ચૈતન્ય હીરા હૈ, ઉસકો પહેચાન કરને કે લીએ અપને ઝવેર બનના પડેગા. ઝવેર કોઈ માં કે પેટ સે પેદા નહીં હોતા, तो पैदा होने के बाद बनता है, ऐसे बनना है, हम बनना है.
ये अच्छा आपने सुन के जे कि आज प्रार्थना में हो श्री सतगुरु की रचना रतन जगदित करम, ऐसे मुद्रा का जो है मुद्रा अरु सत समा, ये मुद्रा है ये आपको सुन के
प्रत्यक्ष पद वगैरह मुद्रा कैसे मिली है, प्रत्यक्षता वगैरह तो मुद्रा कैसे दिखनी मिलेगी, सत्समागम भी प्रत्यक्षता वगैरह कैसे होगा. तो ये वचनामृतम है, तो प्रत्यक्ष सत्संगों के वचनामृत की बात है, परोक्ष वालों की नहीं. हमारी दृष्टांत की बात है, आप आए इसके पहले ये चर्चा होगी
होगी
हमारे धर्मात्मा हुए उनको मुमुक्षु भूमिका में सत्पुरुष का एड्रेस का पता नहीं था, इसका एड्रेस का पता नहीं था, लेकिन आश्रय भावना बहुत थी और इंतजार थे, कहां तक थे उनको ऐसा लगा था कि अभी तो मेरा प्राण छूट है, चरम सीमा है, ये चरम सीमा में आश्रय बस सत्पुरुष कहीं से भी उसको मिल जाएगा. सतपुरुष होते हैं, अभी पृथ्वी निक्षत्र नहीं हुई है, होते हैं लेकिन हमारी नजर नहीं पड़ती है तो हमको पता नहीं चलता है, हमारे नजर पड़ती है पता चलता है, बात तो नजर की है, उन्हें नहीं होने का सवाल नहीं. पंचम आरा के अंत तक ये धर्म रहने वाला है, तो धर्म जिसके जरिए जिसके माध्यम से टिकता है वो भी रहने वाला है, इसमें आ जाता है. धर्मात्मा होते रहेंगे, होते रहते हैं और होते रहेंगे, होता है कोई 150 साल गैर मौजूद भी हो जाते लेकिन होते रहेंगे. लेकिन हमको हमको पता नहीं है तो क्या करें, ये बात जरूर है. जो कोई प्रॉब्लम है तो इस जगह कि हमको पता नहीं है तो ये कुदरत बंधी हुई है, ये पता देने के लिए कुदरत बंधी हुई है योग्यता के साथ. जिसकी योग्यता है उसको पता मिल जाता है, और जिसको योग्यता नहीं आई तो होने पर भी बगल में बैठे हो तो भी पता चलता नहीं है. तो उसको उसको कहाँ एड्रेस लेना है, बगल में बैठा है तो एड्रेस कहाँ लेना है. दूर हो गए तो लेना है, बगल में बैठे तो लेना है क्या.
ये बात है जो बात है
सौभाग्य यही यहाँ हरी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति है। एक ही पंक्ति में पत्र पृथक कर दिया है। भगवान मुक्ति देने में कृपण नहीं है, परंतु भक्ति देने में कृपण है, योग्यता देने में कृपणता है, ऐसा लगता है। भगवान को ऐसा लोग किस लिए होगा, उत्तर देना।
जवाब
क्या शैली है? नहीं, जवाब नहीं लिखा, प्रश्न ही लिखा है, जवाब नहीं दिया है।
इधर का जवाब से
जवाब तो कहां से देंगे?
सुभाग भाई को पत्र
लिखा है, मुक्ति देने में भगवान कृपण नहीं है, ऐसी बातों का जवाब रेडीमेड हमें मिल जाए, ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी। महापुरुष जब इस बात को कहकर के छोड़ देते हैं तो इसमें भी संकेत है कि तुम कुछ तो परिश्रम करो, इसका जवाब क्या होगा। हमें तो सब रेडीमेड चाहिए। अच्छा है कि खाना खिलाने का और खुराक को चबाने का मशीन नहीं निकला है, रोटी बनाने तक निकला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने का और चावल चबाने का मशीन नहीं निकला है। हमें तो नहीं चाहेंगे, सब रेडीमेड चाहिए। और बहुत सोच समझ करके ऐसी बात अधूरी छोड़ी जाती है। जहां भी कोई बात अधूरी छोड़ी हो महापुरुष ने, तो उस पर और ध्यान देना है और गौर से यहां विचारना है कि इसमें क्या रहस्य है, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे मेरे परिश्रम से निकालने की आज्ञा कर दी है। ऐसा समझ लेना कि तुझे परिश्रम करने की यहाँ आज्ञा है, तुम परिश्रम करो, इधर रेडीमेड मत मांगो मेरे से। ऐसी बात है, संकेत है, गंभीर संकेत है। विषयांतर हो गया, क्या इनमें से हो गया
शांत भक्ति के बाद
चलता है व्याकुलता में से हुआ। व्याकुलता वहां तक रहती है,
पदार्थ
निर्णय जहां तक नहीं होता जीव को, वहां तक व्याकुलता अवश्य रहती है। और व्याकुलता रहती है उतना ही नहीं, एक ये भी क्षति का लक्षण है वहां पर। व्याकुल का तो यथास्थ पदार्थ निर्णय नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरी जो बात लिखी है ये क्षति है, वो जरा तकलीफ में देती है कि मिथ्या समता आती है। मिथ्या समता आती है मतलब योग्यता तो कुछ है उसको पता है, दूसरों की ऐसी योग्यता भी नहीं होती है जो वहां तक आता है, ऐसे तो दूसरों की
नहीं
योग्यता नहीं होती। तो यहाँ नहीं रहना है, जिस योग्यता है वहां रहने के मेरा स्थान नहीं है, तो प्राण छोड़ने वाली बात क्यों आती है? नहीं रहना है तब आती है ना, तो वहां समता नहीं रही। अगर वहां तक नहीं आया वहां तक समता है, कुछ न कुछ अंश में समता है, ये योग्यता वाली योग्यता की क्षमता है, समता है, समता में शांति। और कल्पित पदार्थ में सत की मान्यता होती है, ये अनुचित प्रकार है कि सत के लिए कुछ न कुछ कल्पना बनी रहती है, लेकिन योग्यता में ये पता चलता है कि ये व्याकुलता जो है आकुलता है। एक यहाँ कुछ रेड लाइट है, लाल बत्ती है, तो उतनी है कि कल्पित सत की मान्यता या निर्णय नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो परिपूर्ण जिज्ञासा शक्ति रहनी चाहिए। अभी मुझे व्याकुलता चलती है, इसका मतलब देर नहीं हुआ है पदार्थ का, ये इसका सिम्टम है, चिन्ह है। और मुझे अभी पूर्ण जिज्ञासा में रहना है, कुछ कल्पना करके मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसा कुछ भी मुझे करना नहीं। कल्पित पदार्थ में सत्य मान्यता होती है, जिससे काल क्रम से अपूर्व पदार्थ में अपूर्व प्रेम, परम प्रेम के होने वाले होते ही अपूर्व स्वरूप है, स्वरूप की अपूर्वता, स्वभाव की अपूर्वता भाष्यमान होती है और अपूर्व महिमा आती है, उसको अपूर्व प्रेम कहा है। और यही जहां तक ऐसा नहीं होता है तब तक परम योग्यता की, चरम सीमा की योग्यता की है। मुझे इतना थोड़ा हृदय
परम कृपालु देव जिनवाणी मातु पदार्थ का निर्णय मैंने अपूर्व आत्म पदार्थ का निर्णय ऐसा किया। अनंत काल में जिस पदार्थ के विषय में, अपना स्वरूप के विषय में निर्णय नहीं किया, निर्णय बिना का कोई जीव होता नहीं, क्योंकि मनुष्य निर्णय बिना का तो होता नहीं। लेकिन वो निर्णय जगत के पदार्थ संबंधित हैं, अपने स्वरूप को छोड़कर अपने उदय की पर्याय के विषय में है और दूसरे दूसरे पदार्थ के विषय में, और आत्मस्वरूप को छोड़ करके इसमें जगत के पदार्थ की महिमा भरी हुई है। उस निर्णय में प्रथम देह की भी महिमा है और देह के अनुकूल जितने जितने पदार्थ माने गए हैं, है नहीं किंतु माने गए हैं, उस पदार्थ की बहुत महिमा भरी हुई है। उतनी अधिकार है उन पदार्थों पर, हमारे आत्मा के उतनी अधिकाई है, उतनी अधिकाई है कि वो उस ओर से अपना उपयोग को, मैंने बाह्य प्रवर्तन करने वाला उपयोग को एक क्षण के लिए भी वो अंतर्मुख नहीं कर पाता है। उपयोग अंतर्मुख क्यों नहीं होता है, इस प्रश्न का ये सिद्धांत है कि हमारा उपयोग क्यों अंतर्मुख नहीं होता है और हमें क्यों हमारे स्वरूप का अभेद अनुभव नहीं होता है, इसका क्यों का क्या कारण है कि जहां तक आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य द्रव्य और अन्य भाव में, भाव भी अपने शुभ होते हैं, अन्य द्रव्य और अन्य भाव में, यानी विभाव भाव में और अन्य द्रव्य में जहाँ तक अधिक पड़ा रहता है, इसका मूल्यांकन ज्यादा होता है, तब तक उपयोग को फिरने के कोई गुंजाइश नहीं, कोई अवकाश नहीं। इसलिए उपयोग अंदर अंतर्मुख नहीं होता है, ये बहुत सिद्धि बात है। इसके समय कोई ऐसा कहे कि नहीं हमको तो आत्मा का बहुत महिमा है, लेकिन फिर भी हमारा उपयोग अंतर्मुख नहीं जाता है, हमको दूसरे पदार्थ का हिम्मत नहीं है, दूसरे पदार्थ तो सब हम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कीमत नहीं है, और हमारी आत्मा की कीमत भी है, लेकिन उपयोग अंतर्मुख नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं बनता। अभी भी निर्णय ही नहीं हुआ है कि जिसमें सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अपनी आत्मा है, तो विचारणीय प्रश्न तो वो है, जब ये बात समझ में आती है तो जिसको समझ भी, ऐसा मनुष्य कौन कहेगा कि आत्मा सब कि हमारे आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, फिर भी उपयोग अंतर्मुख नहीं होता है, ये परिस्थिति तो स्पष्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण कि ऐसी एक मिथ्या समता आती है कि मैंने अपनी आत्मा को सर्वोत्कृष्ट मान ली है, दूसरे को मैंने उत्कृष्ट नहीं माना, कोई पदार्थ को कोई द्रव्य भाव को मैंने उत्कृष्ट नहीं माना, मैंने आत्मा को ही सर्वोत्कृष्ट माना। ऐसी मिथ्या समता आई है और जिस आत्मा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है ऐसा निश्चय किया है, वो आत्मा को थर्ड पर्सन कल्पित दलिया कल्पित पदार्थ में सत की मान्यता होती है,
आत्मा ना निर्णय करे पर कल्पित करे,
कल्पित करे
हूँ आवा तो जो नहीं आता,
मैं पढ़ा नहीं आता, और मैं पढ़ा करना तो है, ये भी समझ में आया कि मैंपणा मुझे करना है, लेकिन मैंपणा करके जो पदार्थ का निर्णय स्वस्त का निर्णय आना चाहिए वो नहीं आता है, ऐसा भी क्यों? तो एक तो पूर्व भूमिका की जितनी जितनी बातें ली है वो बातें मैंने वो बातों में मैंने वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा, एक बात तो वो है, और वहां तक आए हो तो भी यह तो कहते हैं कदाचित इनकी प्राप्ति हुई हो तथापि वास्तविक तत्व पाने के कुछ योग्यता की न्यूनता के लिए, कुछ न्यूनता मैंने कौन से न्यूनता तो निर्णय करने की जो शक्ति होनी चाहिए, निर्णय करने के जो प्रयास होने चाहिए उस प्रकार का प्रयास करने की न्यूनता है, योग्यता बहुत अच्छी है, अगर यहाँ तक आ गया जितने जितने आगे की बात कर दी वहां तक अगर जीव आ गया तो योग्यता तो बहुत अच्छी भी है, फिर भी पर्याप्त नहीं है, कुछ कमी है, ऐसा कहते हैं।
वो विधि संबंधी कोई भूल तो नहीं रहेगी, ऐसे स्टेज में विधि संबंधी कोई भूल तो नहीं रहेगी, ज्ञान को लक्ष्य नहीं मान करके और दूसरे को लक्ष्य माना हो,
ऐसा भी हो सकता है, विधि संबंधी भूल हो सकती है कि मुझे अपना निर्णय कैसे करना है इस विधि से अनभिज्ञ हो या उस विधि में आए नहीं हो, उस प्रकार की जो निर्णयता है वो निर्णयता से पदार्थ निर्णय नहीं होता, अथवा पदार्थ निर्णय करने का लक्ष्य गया हो कि पदार्थ का निर्णय करने से ही स्वानुभव तक पहुंच पाएगा, इसके पहले पहुंचना नहीं होगा। तो कल्पित निर्णय कर लिया हूं और मिथ्या समुदाय हो, ये निर्णय तो है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान जैसे अनंत अनंत गुण स्वरूप ही है, ज्ञान कहते ही इसमें अभेद रूप से अनंत गुण सारे आत्मा का आ जाता है, ऐसा मुझे निश्चय है, मानता हूं। तो ये वैचारिक भूमिका में ये भूल होती है, निर्णय वैचारिक भूमिका में होता है, इसलिए वैचारिक भूमिका में ऐसा होने से ऐसा कल्पित निर्णय हो जाता है।
आज आपकी आगे योगदान
फिर भी
आत्मानो विचारिक दृष्टि से साथ निर्णय करो सता या कल्पना की है,
ऊपर की योग्यताओं आवे अने वैचारिक निर्णय करो तो पण
कल्पना थाय।
अनंत काल से नथिंग प्राप्त थयू तत्व अनंत काल से प्राप्त नहीं माने तो इसका भी कोई वजह तो है, बिना वजह कोई प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं, नहीं इनकी भी कोई वजह तो है। तो इतनी इतनी बात इसमें है, इसलिए सब पुरुषों ने ये कहा, आचार्यों ने भी यही कहा कि ये निर्णय वैचारिक भूमिका में प्रयोग पूर्वक होता है, मात्र विचार से नहीं होता। क्या
प्रयोग मान लो क्या
प्रयोग पूर्वक प्रयोग में ये निर्णय होता है, मात्र विचार में नहीं होता। वो बात अवश्य है कि प्रयोग के काल में विचार की उपस्थिति है, निर्विचार दशा नहीं हुई है, वो बात अवश्य है, लेकिन केवल विचार दशा है और प्रयोग दशा नहीं है तो बात नहीं है, ऐसे निर्णय कभी नहीं होता।
जितनी कीमत देनी चाहिए उतनी कीमत नहीं दे पाते,
फिर तो विचार में तो भूलेगा, विचार में तो ये उसको यही लगेगा कि नहीं मैंने तो पूरी कीमत दे दी है, इससे ज्यादा मेरे लिए जगत में कोई है नहीं। कैसे कोई ऐसे उदय में हो तो उसको तो ऐसा लगे कि भाई इनके पास पैसा है, उसके पास मकान है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास कुटुंब है, ये है वो है, इसलिए ये हम नहीं मान सकते तो उनके सबसे अधिक आत्मा की कीमत। लेकिन इसको छोड़ करके बैठ गया हो तो दे दी क्या, और विचार में ये बात हो गई कि हमने किसी और कारण से तो नहीं छोड़ा, हमने किसी को अधिकता नहीं दी, इसका यही कारण कि हमारे आत्मा की हमको अधिकता आई है।
जितना इसको सावधानी रखना चाहिए इतनी सावधानी नहीं रखनी।
मतलब कैसे?
जैसे मतलब ये प्रजात निर्णय के बारे में जिसको ये प्रयोग के बजाय अभी ये पद्धति है इसमें जितनी सावधानी रखनी चाहिए,
इस पद्धति में नहीं आया है सावधानी, क्या उस पद्धति में ही नहीं आया है, यहाँ तो साक्षात कार्य पद्धति का सवाल है, उस पद्धति में ही नहीं आया है, ऐसी बात है। ये समय सार में इसका बहुत सुंदर बात लिया है, दो बात गोपाल देव ने 751 नंबर में के पत्र में लिया है, वही बात समय सार में अमृत चंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट किया है।
निर्णय प्रत्यक्ष तौर से होता है, प्रयोग में परोक्ष विचार में नहीं होता। विचार के विषय सभी परोक्ष ही होते हैं। जिस मन से विचार होता है उसमें विचार के विषय सभी परोक्ष रह जाते हैं। और ये आत्मस्वरूप का निर्णय है वो प्रत्यक्ष अंश से होता है। प्रत्यक्ष अंश से प्रत्यक्ष अंश को अवलंबित होकर के होता है, ऐसी एक बात है। तो क्या है मूल संस्कृत में बहुत अच्छा बात है कि ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, इतनी बात लिया है। ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्ध पना है, प्रसिद्धम ही ज्ञानम। ज्ञान तो प्रसिद्ध है, कौन सा ज्ञान प्रसिद्ध है? तो पांच इंद्रिय के साथ प्रवर्तने वाला ज्ञान की प्रसिद्धि तो यहां है ही नहीं। छठा मन के साथ परिणमन करने वाला ज्ञान की भी प्रसिद्धि यहां नहीं है। यहां ज्ञान मात्र कहता ज्ञान विशेष को छोड़ करके मात्र ज्ञान लिया, जो स्वभाव स्वरूप है। ज्ञान मात्र ज्ञान सामान्य तो सामान्य स्वभाव स्वरूप है, लेकिन स्वभाव अप्रगट है, शक्ति रूप है, सामर्थ्य है, और ये व्यक्ति रूप है, प्रगट है, साकार है और अनुभव गोचर भी है। इसलिए अनुभव प्रत्यक्ष पड़ा होने से प्रसिद्ध में प्रसिद्ध ही ज्ञानम, प्रसिद्ध मैंने प्रकट। ऐसे ज्ञान मात्र से स्वसंवेदन सिद्धत्वात् आचार्य महोदय सिद्ध रखते हैं कि ऐसे ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से ही सिद्धि होती है। बिना ज्ञान कोई पदार्थ का निर्णय हुए तो विधि की भूल है, उसमें तो रास्ता ही अलग हो जाएगा, कोई दूसरे रास्ते पे ठीक चला जाएगा या कल्पित निर्णय हो जाएगा। लेकिन ज्ञान मात्र में अहमपना होवे, सामान्य ज्ञान मात्र में अहमपना होवे, कैसा ज्ञान है कि वो वेदक स्वरूप है, जानन स्वरूप नहीं है।
ध्यान कहता गया है,
जानन कहता गेय के साथ समझ जाता है तो थोड़ पर समझ जाता है, और वेदक में अहमपना आता है। क्या फर्क होता है? तो वेदन में तो पर आ ही नहीं सकता और आने की गुंजाइश भी नहीं है, और सामान्य ज्ञान तक तो वो विशेष ज्ञान नहीं पहुंचता है, तो फिर अन्य पदार्थ का वेदन आने का तो सवाल ही कहां है। तो बहुत थोड़ी किसी में ज्ञान विशेष से ही लाइन कट गई। जैसे राग से भिन्नता करके पर पदार्थ का संपर्क की लाइन छोड़ दी, ऐसे आगे से क्यों वो कर ली, वैसे इससे आगे गए कि ज्ञाकार ज्ञान को छोड़ करके सामान्य ज्ञान जो वेदन रूप है और जिसमें पर का वेदन हो ही नहीं सकता, उसमें स्वयं का वेदन है और स्वयं का वेदन पर उसका उपयोग जाता है, फिर गे पर उपयोग नहीं जा करके ज्ञान विशेष में ज्ञान सामान्य कर जाता है। क्या हुआ? उसी को स्वसंमुखता कही, उसको अंतर्मुखता कही, उसको रागांश का अंश रूप अभाव कर दिया ऐसा कहो, या उसको स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति कहो, जो कृपाल देव ने साथ से क्या बताया, सब एक ही बात है। और उसको उपदेश छाया 220 में अस्तित्व ग्रहण क्या कहा,
क्या कहा कि अपने ज्ञान सामान्य में यानी अपने स्वभाव में अपना अस्तित्व मालूम पड़ गया उसको कि मैं ऐसा हूं और मैं यहां हूं। क्या मैं यहां हूं, मेरे में हूं, मैं ऐसा हूं। तो उसमें यथार्थ निर्णय हो जाता है, जैसा स्वभाव है वैसा निर्णय हो जाता है। ये वेदन से निर्णय हुआ है, बिना वेदन निर्णय की भूमिका नहीं है, मात्र विचार और निर्णय की भूमिका नहीं है, वेदन से निर्णय होना चाहिए। आत्मा वेदक स्वभावी होने से, अपनी आत्मा वेदक स्वभावी होने से अपना निर्णय अपने वेदन से होना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। प्रसिद्धम ही नानम ऐसा कह करके नान ने को जानता है इसलिए प्रसिद्ध है, ये सारे पहाड़ी दिखती है इसलिए मेरा ज्ञान की प्रसिद्धि है, ऐसी बात नहीं आनी है चर्चा में, ये बात नहीं आई आचार्य महाराज को।
ज्ञान विशेष का ये तिरोभूत हुआ या ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य कैसे बना? उपयोग ने ज्ञान सामान्य को अपना विषय बनाया इसलिए विशेष का रूपांतर हुआ सामान्य
को, उसका जो दिशा है वो पलटी। निर्णय के काल में दिशा पलटती है, तब दिशा पलटती है, जब दिशा पलटती है फिर निर्विकल्प उपयोग आएगा। उसका जो चमत्कार है वो इस प्रकार का है कि ये तो एक अंश ज्ञान की पर्याय का सामान्य तो एक अंश है, लेकिन वो अंश जो सामान्य स्वभाव है उसके सदृश है, इसलिए कल्पना करनी नहीं पड़ती। चीज मौजूद होगी इसलिए कल्पना नहीं करनी पड़ती कि कल्पित निर्णय हो जा रहा है। तो ये जो आपत्ति है, ये जो बड़ी विटंबना है कि हम आत्मा का निर्णय करने को जाते हैं तो उसमें कल्पना हो जाती है और उनको लगता है कि नहीं हमने सही निर्णय कर लिया, और वो ऐसा सही लगता है कि आगम के और ज्ञानियों के वचन से हमारा विचार का मेल खाता है, विरुद्ध नहीं जाता है हमारा विचार, तो ऐसा लगता है कि बराबर है हमारा निर्णय तो आगम अनुकूल है, जैसे आचार्यों ने कहा ज्ञानियों ने कहा ऐसा ही हमको विचार में आता है कि मेरा आत्मा ऐसा ही है, दूसरे का आत्मा नहीं लेकिन मेरा आत्मा, फिर भी वो कल्पित है।
ये
ज्ञान का उसमें जो वेदन से निर्णय आना चाहिए वो नहीं आता है।
ज्ञान
ज्ञान के परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष चीज का निर्णय कैसे होगा? जैसे राग में आत्मस्वरूप का निर्णय की ताकत है क्या कि नहीं है, वैसे परोक्ष ज्ञान में भी आत्मस्वरूप का निर्णय करने की ताकत नहीं है। जो मनाश्रित विचार चलता है आत्मा का उसमें आत्मस्वरूप का निर्णय की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, गुंजाइश नहीं है, ताकत नहीं है, योग्यता नहीं है, समझ लो सब इसी प्रकार है। तो ये दिशा परिवर्तित होती है, ये अपूर्व है, ऐसा कभी हुआ नहीं, स्वसन्मुखता कभी हुई नहीं, स्व के सन्मुख कभी हुआ नहीं, तो उसमें क्या है कि ये जो वेदक अंश है, सामान्य वेदक अंश है, वेदन कभी परोक्ष हो सकता है? तो ये तो एक चिंगारी है कि जो सारा विश्व को जला सकती है, ऐसी एक चिंगारी है। वैसे एक अंश ऐसा है कि जिसमें अनंत ज्ञान स्वभाव की खानी का पत्ता लग जाता है, अनंत ज्ञान स्वभाव, अनंत सुख स्वभाव, पर इससे भी अधिक मेरी प्रत्यक्षता में अनंत है, एक अंश प्रत्यक्ष है, ये इस चीज का सबूत है कि मेरे चीज अनंत प्रत्यक्ष है। बस जब अनंत प्रत्यक्षता अपने स्वरूप में भाषित हुई, मास्टर साहब भाव भाषण हुआ यहाँ पर, ये भाव भाषण की चीज है, भाव भाषण को हमें यहाँ तक ले जाना है। ये तो सब दृष्टांत था कि ऐसे रोटी बनाना, ऐसे साइकिल चलाना, लेकिन भाव भाषण को तो यहाँ ले जाना है।
બીજા
કોઈ ક્રોધાદી પરિણામ ના વેદન છે એ બધા પર છે, ખરેખર તો એ ફળ છે, અને આ જે સામાન્ય જ્ઞાનનો અંશ છે એ સ્વ છે, એટલે સ્વને સ્વનું વેદન એનું અંતકાળમાં પોતે ક્યારે પણ અંદર વળીને જોડ્યું નથી, બહાર વળીને ઉપયોગે વિચાર્યું છે ઘણું, પણ અંદર વળીને જોયું નથી। આ તો એવું છે કે કોઈ એમ કહ્યું કે ભાઈ તમારા ઘરમાં અઢળક દોલત દાટેલી છે, કેટલી અઢળક દોલત દાટેલી, મેં આપકા જો આંગણ હે ઘર મે ખિડકી બંધ કરકે બહાર નહીં, ઘર કે અંદર કા જો આંગણ હે ફિર કમરા શરૂ હોવે પર પ્રસાદ શરૂ હોવે, ઉસ આંગણ મેં આપ થોડા સા જો પથ્થર હે एक दो निकाल दीजिए, आपको एक चरु बड़ा लिखने में आएगा, पर चरु के नीचे चरु, चरु के नीचे चरु, चरु के नीचे चरु और भी हो बहुत है, आपको जितना खोलो वो तो निकलते ही जाएंगे। कोई देवी संपत्ति भरी हुई है वहां, और आदमी को कहने वाले पर विश्वास आता है, वो लगता है कि इसमें क्या परिश्रम है, थोड़ा सा पत्थर निकालना है, आधे फुट का एक फुट का तो खोदना है, ज्यादा नीचे है भी नहीं, तो निकाल दिया, तो निकाल दिया तो एक दो फुट में निकाला, लेकिन चरु का डायमीटर बहुत बड़ा था, मैंने चरु इतना नहीं था कि जितना पत्थर निकाला, एक फुट डायमीटर का नहीं था, दो फुट डायमीटर का नहीं था, लेकिन पांच दस फुट डायमीटर का अपना था, और उसमें रत्न और सोने के मोहरे भरचक भरी हुई थी छलो छल। अब उनको दो फीट में उसका किनार किनार दिखाई, तो चरु अंश में दिखाया या पूरा दिखा,
पूरा दिखा, पूरा दिखा,
कितना बड़ा है वो एक अंश से पूरा देखा के नहीं देखा, ज्ञान में पूरा आया क्या नहीं आया, लेकिन प्रत्यक्ष तौर से आया, इसकी कल्पना पहले जो करी थी बताई थी जिसने कि भाई इतना बड़ा चरु होगा, तो इनका एक फुट डायमीटर में जो इसकी गोलाई है उस इतनी गोलाई देख करके पूरी गोलाई को पता चलाता है कि ये गोलाई ऐसी नहीं है, इतनी नहीं है, तो ऐसी दिखती है भाई, तो उसको प्रतीति आती है, कितनी प्रतीति आती है कि जितनी बात कही है उसकी प्रतीति आती है, ऐसे विचार में तो पहले आ जाए कि मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान शक्ति है, अनंत सुख भरा है, अनंत आनंद भरा है, अनंत विधि भरा है, अनंत प्रत्यक्षता है, लेकिन विश्वास देखे बिना कभी जीव को आता नहीं, सुनी बात पर विश्वास नहीं आता है, अगर विश्वास करता है तो बल नहीं आता है, सुनी बात पर विश्वास कर लिया कि आगम ने किया, हमारे गुरु ने कहा, हमारे गुरु पर हमने 100% विश्वास है, मानते हैं कि आत्मा ऐसा है, फिर भी बल नहीं आएगा, प्रत्यक्ष देखने से बल को उत्पन्न होने में रोक पाएगा, परिस्थिति उल्टी बनती है। इधर तो जीव विचार करता है कि मुझे पुरुषार्थ करना है और मेरा पुरुषार्थ उठता नहीं है, मैं क्या करूं, ये एक समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरी परिस्थिति पैदा होती है कि यथार्थ निर्णय, ये पदार्थ निर्णय के बाद बहुत सुंदर लिया है कि पदार्थ निर्णय की भूमिका तक आया और पदार्थ निर्णय हुआ तो अपूर्व पदार्थ में परम प्रेम उत्पन्न होता है। परम प्रेम ने चरम सीमा का प्रेम मैंने महिमा यहाँ पर उतनी महिमा आती है, उतनी महिमा आती है कि फिर जगत के कोई पदार्थ की महिमा रहे ये बात विचार करने लायक भी नहीं है, इसका विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि अनंत गुण का निधान प्रत्यक्ष तौर से भाषित हो जाता है, पर जो भाषित होता है वैसा अनुभव में आता है, तो अनुभव में ये पता चलता है कि जैसा भाषित हुआ जिसका अनुभव हुआ है वैसा का वैसा ही अनुभव में आया। तो ये प्रत्यक्षता है वो तो बल को ले आती है। प्रत्यक्ष देखने से असरमुक्त हो ही नहीं सकता परिणाम। आप एक एक्सीडेंट देखो ना, आपके परिणाम इस असर से मुक्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसकी फोटो कितनी भी क्लैरिटी वाली हो और कितना भी वर्णन किया हो इसके नीचे कोई तो परोक्षता के असर नहीं आएगी परिणाम पर, ऐसे असर प्रत्यक्षता के आते हैं। तो जिसने अनंत वीर्य का भंडार भी अपने में देखा उसका पुरुषार्थ उछले बिना रहे कैसे, हर्ष के प्रसंग में हर्ष को नहीं रोक सकते, शोक के प्रसंग में दुख को शोक को नहीं रोक सकते, तो वैसा भंडार प्रत्यक्ष तौर से दिखने में आवे और उसकी महिमा उछले नहीं और उसका उस महिमा के साथ उसका चैतन्य वीर की स्फुरिणा हुए नहीं, न भूतो न भविष्य बन ही नहीं सकता, बनेगा भी नहीं किसी को। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, पुरुषार्थ स्वयं होता है, स्वयं होता है यही पुरुषार्थ सच्चा है। करना पड़ता है वो बलात्कार करने की बात है, ऐसे परमात्मा पर बलात्कार किया नहीं जाता और करने से विजय नहीं होती है, हार ही होती है।
पुरुषार्थ करवाओ बलात्कार का है,
करवो हो तो करवो हो तो हा जुदी बात है, करवो छे जुदी बात छे। लोग जगत में नहीं कहता कि प्रेम किया नहीं जाता प्रेम हो जाता है, क्या कहते हैं ऐसे ही बोलते कि नहीं, ये तो परम प्रेम की बात है। प्रेम शब्द तो लगाया है, परम प्रेम शब्द लगाया है कि अपूर्व पदार्थ में परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, या कल्पित निर्णय में, यहाँ से अस्थि निकलती है अनर्पित, कि निर्णय अगर यथार्थ होता तो परम प्रेम अपूर्व पदार्थ में उत्पन्न हो ही जाता है, करना पड़ता
नहीं,
बहुत नेचुरल पोजिशन है।
यहाँ पे जो है प्रयोग किया नहीं जाता है, प्रयोग हो जाता है, तो कैसा
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्रयोग तो किया जाता है। क्यों कहा उद्देश्य इसलिए है, ये बात में तो विचार करें इसका, कि जहां तक ये पदार्थ निर्णय नहीं होता है वहां तक आकुलता बनी रहती है। क्या होता है, चित्त में व्याकुलता छूटती नहीं है और ये व्याकुलता जीव को पसंद नहीं है, व्याकुलता जीव को पसंद नहीं है, माथा बहुत खराब रहता है, इसलिए वो प्रयोग करे बिना रहेगा नहीं कि मैं कोई ऐसा प्रयोग करूं, मैं ऐसा कोई प्रयत्न करूं, मैं कोई ऐसी बात करूं कि जिससे मेरी ये व्याकुलता छूट जाए और मेरे प्रभु पर मेरा परम प्रेम उमड़ पड़े। क्योंकि प्रयोग में अभी प्रेम नहीं हुआ है इसलिए वो करता है, डिफरेंस है होता है ये बात।
બીજે બાળક વર્તમાન લઈને કે એને આ પૂછાતો થાય છે બીજે બીજે પદાર્થની અંદર બાળક વર્તવાથી એને આ પૂછાતો
થાય અહીં તો એ યોગ્યતા છે આગળ આવી ગયો છે જે અલ્પ પણ સુખ ઈચ્છા નથી ઓર જ્ઞાને સત્પુરુષ કે પ્રતિ પરમેશ્વર બુદ્ધિ હૈ ઓર પૂર્ણતા કા અભિલાષી હૈ અપને દોષ કો બરાબર અપક્ષપાત સાસે દેખતા હૈ યે સબ તો હો ચુકા હૈ अब पदार्थ का निर्णय की बात है जो सम्यक दर्शन का कारण है। 751 में तो कृपाल जी ने उसको संकित कहा है, आत्मसिद्धि में भी संकित कहा है उसको। तीनों बात आत्मसिद्धि में ली है वो 751 में ली है उस परमपद्य में थोड़ा उतना क्लियर पता नहीं चले विचार की गहराई नहीं हो गई तो 751 में तो साफ बात समझा दी।
ऐसे निर्णय बिना किंचित भी साता अगर भेदा है तो बहुत दूर है।
ये तो दो टूल की चीज है, साता का जो वेदन है उसमें ठीक बना आता है, वहां तो आदमी को बहुत उल्टा निर्णय हो जाता है। उसके पहले तो आकुलता बनी ही रहती है, मेरा स्वरूप कैसा एक मेरी अपूर्व जिज्ञासा की चीज और समस्या रही कि मेरा स्वरूप कैसा। तो जहां तक मेरा स्वरूप जैसा है वैसा भाषित नहीं होवे, विचार में नहीं आवे सो बात नहीं, भाषित नहीं होवे वहां तक पुरुषार्थ का बल उठना कतई संभव नहीं है। पुरुषार्थ जगेगा नहीं और वो पुरुषार्थ नहीं जगने से अभेद अंतर्मुख अनुभव हो गए, निर्विकल ये बनने वाली चीज नहीं है। ये निर्णय है वो सर्वोत्कृष्ट पात्रता की भूमिका है। आगे कोई पात्रता पात्रता करके ऊंची ऊंची पात्रता पर आया है, लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट पात्रता की भूमिका है। और इस वक्त जो है दर्शन में और दब जाता है और इसका